नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी से उत्पन्न खतरों पर चिंता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने इस वर्ष अक्टूबर में 16.58 अरब वित्तीय लेनदेन का नया रिकॉर्ड बनाया। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन आज से सऊदी अरब के रियाद में शुरू होगा। भारत ने ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के पूल ए में दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और चीन के मौजूदा चैंपियन डिंग लिजेन के बीच एक और मैच सिंगापुर में ड्रॉ। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, विशेषकर डीप फेक से उत्पन्न खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भुवनेश्वर में 59वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस पर कार्यभार कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने पुलिस थानों को संसाधन आवंटन का केंद्र बिंदु बनाने का भी सुझाव दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। उन्होंने सम्मेलन के दौरान सुझाई गई रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने पुलिस नेतृत्व से डिजिटल जालसाजी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित संकटों से निपटने के लिए भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता दोगुनी कर इस चुनौती को अवसर में बदलने की अपील की। शहरी पुलिस प्रबंधन में प्रभावी कदमों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल देश के 100 शहरों में समन्वित रूप से लागू की जाए। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र पर जोर दिया तथा पुलिस बल को और अधिक सतर्क, कौशल संपन्न, विश्वसनीय और पारदर्शी बनने का आग्रह किया। भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। ये नवगठित जिला महाकुंभ मेला क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ये निर्णय कुंभ मेले के प्रबंधन और प्रशासन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस वर्ष माघ मेले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये विचार सामने रखा था। प्रत्येक 12 वर्ष पर लगने वाला महाकुंभ अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को सम्पन्न होगा। भारतीय संस्कृति के संवर्धन में महाकुंभ का विशिष्ट योगदान है। रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस सांसदों से कहा है कि वे पंजाब के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के बारे में सीबीआई जांच की मांग करें। श्री बिट्टू कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के निरीक्षण के सिलसिले में कल जालंधर में थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब को 44,000 करोड़ रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में भेज चुकी है। उन्होंने कांग्रेस से मामले की सीबीआई जांच की मांग प्रधानमंत्री और पंजाब के राज्यपाल से करने को कहा।
मैं कांग्रेस पार्टी दे प्रधान नु भी कहना, कांग्रेस पार्टी दे एमपी नु भी कहना, कल नु ही जाके सारे मेंबर पार्लियामेंट सीबीआई इंक्वायरी दी गवर्नर साहब कोल जाके डिमांड करन, प्रधानमंत्री जी कोल डिमांड करन, अमित शाह जी कोल डिमांड करन, नड्डा साहब कोल जाके डिमांड करन, कोर्ट च जाके डिमांड करन भी सानू भाई पंजाब जेड़ी सेंटर ने एमएसपी भेजी किसानां नू नहीं मिली 300-300 रुपया, इहदा मतलब भगवंत मान दी सरकार हजारां करोड़ रुपया खा गई।
श्री बिट्टू ने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन की आधुनिक इमारत का लोकार्पण अगले वर्ष अप्रैल तक कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगे। कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए इस वर्ष अमर जैन राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करेंगे। वे 100% दृष्टिबाधित लोगों को कानूनी परामर्श उपलब्ध कराते हैं। अमर जैन ने अपनी प्रेरक जीवन कथा साझा करते हुए उनके समक्ष आई बाधाओं का उल्लेख किया।
आई ऑल्सो वर्क्ड विद जुडिशरी इंक्लूडिंग दिल्ली हाई कोर्ट थ्रू इट्स एक्सेसिबिलिटी कमिटी एज मेंबर एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एक्सेसिबिलिटी कमिटी टू मेक जुडिशियल सिस्टम मोर एक्सेसिबल टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से इस वर्ष अक्टूबर में 16,58,00,00,000 वित्तीय लेनदेन हुआ है। केवल एक महीने में यूपीआई से इस लेनदेन में लगभग 23,49,000,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। पिछले वर्ष अक्टूबर की तुलना में ये 45% अधिक है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। यूपीआई ने न केवल वित्तीय लेनदेन को तेज, सुरक्षित और सहज बनाया है, बल्कि व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को भी सशक्त बनाया है। इसके चलते देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। प्रमुख बाजारों सहित संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में यूपीआई के चालू होने से भारत के भुगतान इंटरफेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गति मिली है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन आज सऊदी अरब के रियाद में शुरू हो रहा है। पहली बार पश्चिम एशिया इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत इस संधि की 30वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मंडप में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेगा। प्रतिनिधिमंडल अरावली ग्रीन वॉल परियोजना प्रस्तुत करेगा, जो उत्तर पश्चिम भारत के 4 राज्यों में 10,15,000 हेक्टेयर बंजर भूमि को उर्वरक बनाने की व्यापक पहल है। ये परियोजना मरुस्थलीकरण, बंजर भूमि का विस्तार और सूखे की आपदा रोकने के भारत के नवाचारी प्रयासों को वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और उन्नत जल प्रबंधन रणनीतियों के माध्यम से सफल बनाएगी। ये पहल सामुदायिक सहयोग से भौगोलिक सूचना प्रणाली और प्रकृति अनुरूप समाधान लागू करेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की संधि को अंतिम रूप देने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ वैश्विक सम्मेलन कल बेनतीजा समाप्त हो गया। ये अंतर सरकारी वार्ता समिति की 5वीं बैठक थी, जो 2022 से प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से रोक लगाने का समझौता तय करने पर काम कर रही है। सप्ताह भर चली वार्ता में लगभग 200 देश शामिल हुए, जहां प्लास्टिक उत्पादन और हानिकारक रसायनों पर नियंत्रण की मांग करने वाले देशों और केवल प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले देशों के बीच गहरे मतभेद दिखे। बांग्लादेश ने इस्कॉन के 83 सदस्यों को वैध पासपोर्ट और वीजा होने के बावजूद बेनापोल चेकपोस्ट से भारत आने से रोक दिया है। बेनापोल आप्रवासन पुलिस के प्रभारी अधिकारी इम्तियाज एहसानुल कादर बुहिया ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इस्कॉन के सदस्यों के पास यात्रा के लिए सरकारी अनुमति नहीं थी। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान मूल के अमरीकी व्यापारी मसाद बुलोस को अपने मंत्रिमंडल में अरब और मध्य पूर्व मामलों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। बुलोस जाने माने वकील हैं और उन्हें व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। ट्रंप के चुनाव प्रचार में उन्होंने अमरीकी अरब मतदाताओं को पक्ष में करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। मौसम विभाग ने चक्रवात और निम्न दबाव के कारण केरल में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज राज्य के 4 जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिले रेड अलर्ट पर हैं। केरल के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोट्टायम, पथानामथिट्टा, वायनाड जिलों में आज सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित की गई है। मछुआरों को केरल कर्नाटक लक्षद्वीप तट से समुद्र में जाने से मना किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूस्खलन, बांध, जल ग्रहण क्षेत्रों और नदी तटों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजय ने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने को कहा है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर।
मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान फेंजल कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज उत्तर तमिलनाडु से होते हुए कमजोर पड़ने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
सिंगापुर में कल विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिजेन के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने थ्री फोल्ड रिपीटेशन के जरिए छठे दौर के बाद खेल समाप्त करने का निर्णय लिया। लिरेन और गुकेश 14 राउंड की श्रृंखला में लगातार 3-3 अंक की बराबरी पर रहे। प्रतियोगिता में जीत के लिए 4.5 अतिरिक्त अंक प्राप्त करना जरूरी है। वहीं ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के पूल ए में कल भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से हरा दिया। अर्शदीप सिंह ने हैट्रिक लगाई जबकि अरजीत सिंह हुंदल ने भारत के लिए 2 गोल किए। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल्स में पहुंच गया है। कल उसका मुकाबला मलेशिया से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। उधर ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय और दुनिया के 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने यह उपलब्धि हासिल की थी। 21 वर्षीय एरिगेसी वर्तमान में विश्व रैंकिंग में भी 4th स्थान पर हैं।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, आने वाली समस्याओं और इनके समाधान पर आमंत्रित विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2342-1050 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से 9289094044 पर प्रश्न भेजे जा सकते हैं या #AIR के साथ एक्स पर पोस्ट किए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु पुडुचेरी में फेंजल का कहर, नवभारत टाइम्स सहित अधिकतर अखबारों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है फेंजल से भारी बारिश, रनवे पर उतर रहा विमान हवा में लहराया। अमर उजाला की खबर है फेंजल से पुडुचेरी में भारी बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। ब्रिक्स करेंसी पर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, उत्पादों पर लगाएंगे 100% आयात शुल्क, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वहीं राजस्थान पत्रिका ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की टिप्पणी प्रकाशित की है। पत्र लिखता है भारत डॉलर में व्यापार से हटने के खिलाफ है, चाहता है रुपए की मजबूती। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराधों पर जताई चिंता, कहा विकसित भारत के दृष्टिकोण अनुरूप अपने को ढाले पुलिस। जनसत्ता ने यह खबर अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। देश में अब हर चौथा शेयर निवेशक महिला, कुल 10.5 करोड़ में 2.5 करोड़ महिलाएं। दैनिक भास्कर में यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की गई है। निर्माण श्रमिकों को फिर आर्थिक योजना का लाभ मिलेगा, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है एलजी ने निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दी। साल में 2 बार टीका लगवाने से रुकेगा एचआईवी संक्रमण। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में पहले से मिल रहा लेना कापावीर टीका, अमर उजाला की सुर्खी है।
धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी से उत्पन्न खतरों पर चिंता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने इस वर्ष अक्टूबर में 16.58 अरब वित्तीय लेनदेन का नया रिकॉर्ड बनाया। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन आज से सऊदी अरब के रियाद में शुरू होगा। भारत ने ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के पूले में दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।